SBS रेडियो हिंदी के प्रोग्राम तुमको न भूल पाएंगे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट कात्यायनी। तुमको न भूल पाएंगे में आज हम जिस कलाकार की बात करने जा रहे हैं वो दादरा और ठुमरी की साम्राज्ञी थी। 13 साल की उम्र में एक राजा ने उनका रेप किया। दुनिया के डर से बेटी को वो अपनी छोटी बहन बताया करती थी। इस हादसे के बावजूद उन्होंने दोबारा खुद को समेटा और जीवन को नए सिरे से शुरू किया। ये वो गायिका थी जिसकी आवाज सीधे रूह में उतरती है, जिन्होंने शोषण को अपना हथियार बनाया और सुरों की ऐसी महफिल सजाई कि दुनिया आज भी उनकी आवाज की दीवानी है। उनकी बदौलत गजल को नए सुर मिले। जब जब गजल कहीं होगी या फिर गाई जाएगी, उनकी आवाज को याद किया जाएगा। डबडबा आई वो आंखें जो मेरा नाम आया, इश्क नाकाम सही फिर भी बहुत काम आया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मलिकाए गजल बेगम अख्तर की। बेगम अख्तर का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ था। उनके बचपन का नाम बीबी था। उनके पिता असगर हुसैन एक युवा वकील मुश्तरी बाई के साथ प्यार में पड़ गए थे और बाद में उन्हें और उनकी जुड़वा बेटियां जोहरा और बीबी का त्याग कर दिया। बेगम अख्तर बचपन से ही पार्श्व गायिका बनना चाहती थी, लेकिन उनके परिवार वाले उनकी इस इच्छा के सख्त खिलाफ थे। उनके चाचा ने उनके शौक को आगे बढ़ाया। बचपन में संगीत सीखने के वक्त उस्ताद मोहम्मद खान और बेगम अख्तर के बीच ऐसी घटना हुई कि बेगम अख्तर ने गाना सीखने से मना कर दिया। उन दिनों बेगम अख्तर सही सुर नहीं लगा पाती थी। जब वो नहीं सीख पाई तो उनके गुरु ने उन्हें डांट दिया। बेगम अख्तर रोने लगी और तब उनके उस्ताद ने कहा, बस इतने में ही हार मान गई मेरी बहादुर बिटिया, चलो एक बार फिर से सुर लगाने में जुट जाओ। उनकी ये बात सुनकर बेगम अख्तर ने फिर से रियाज शुरू किया और सही सुर लगाए। बेगम अख्तर ने बाली उम्र में मंच पर अपनी पहली प्रस्तुति दी थी। ये कार्यक्रम बिहार में आए भूकंप के पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद जुटाने के लिए आयोजित किया गया था, जिसकी मुख्य अतिथि प्रसिद्ध कवित्री सरोजनी नायडू थी। उन्हें बेगम अख्तर की गायकी इस कदर पसंद आई कि उन्हें उपहार में उन्होंने एक साड़ी भेंट की। बेगम अख्तर के साथ बचपन में एक हादसा हुआ, जिसमें मात्र 13 वर्ष की कच्ची उम्र में ही वो माँ बन गई। हुआ कुछ ऐसा था कि बिहार के एक राजा ने उनका कद्रदान बनकर उन्हें उनकी कला को देखने के लिए बुलावा भेजा और उनका बलात्कार किया। इसके बाद अख्तरी बाई प्रेग्नेंट हो गई और एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम शमीमा है। लेकिन लोक लाज के डर से उन्होंने इस बात को दुनिया से छुपाए रखा और शमीमा को अपनी छोटी बहन बताती रही। काफी लंबे समय के बाद दुनिया को पता चला कि ये उनकी बहन नहीं बल्कि उनकी नाजायज बेटी है। इस क्रूर हादसे के बावजूद बेगम अख्तर ने दोबारा खुद को समेटा और जीवन को नए सिरे से शुरू किया। उनकी प्रसिद्ध फिल्में जैसे अमीना, मुमताज बेगम, रूप कुमारी, जवानी का नशा, नसीब का चक्कर, अनार बाला, रोटी, दाना पानी, एहसान और फिल्म जलसा थी। फिर 1942 में महबूब खान की फिल्म रोटी में बेगम अख्तर ने अभिनय करने के साथ ही गाने भी गाए। उस फिल्म के लिए बेगम अख्तर ने 6 गाने रिकॉर्ड कराए थे, लेकिन फिल्म निर्माण के दौरान संगीतकार अनिल विश्वास और महबूब खान के आपसी अनबन के बाद रिकॉर्ड किए गए 3 गानों को फिल्म से हटा दिया गया। बेगम अख्तर ने बतौर अभिनेत्री भी कुछ फिल्मों में काम किया था। उन्होंने एक दिन का बादशाह से फिल्मों में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, लेकिन तब अभिनेत्री के रूप में कुछ खास पहचान नहीं बना पाई। उन्होंने मुमताज बेगम, अमीना, रूप कुमारी, जवानी का नशा, नसीब का चक्कर जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन जल्द ही एक्टिंग से उनका मोह भंग हो गया। फिर 1945 में उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से शादी कर ली और तभी से उनका नाम बेगम अख्तर पड़ गया। पति के कहने पर उन्होंने गाना छोड़ दिया था। वो बीमार रहने लगी, सिगरेट बहुत पीती थी, इसलिए उन्हें फेफड़े की बीमारी के साथ डिप्रेशन की समस्या हो गई। तब डॉक्टरों ने कहा कि गाने से उनकी बीमारी ठीक हो सकती है, फिर पति की रजामंदी के बाद 1949 में वो ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से जुड़कर गायन की दुनिया में उनकी वापसी हो गई। बेगम अख्तर ने 1953 में प्रदर्शित फिल्म दाना पानी के गीत ए इश्क मुझे और कुछ याद नहीं और 1954 में प्रदर्शित फिल्म एहसान के गीत हमें दिल में बसा भी लो गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बेगम अख्तर गजल, ठुमरी और दादरा गायन शैली की बेहद लोकप्रिय गायिका थी। उन्होंने वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दवा न दे, जैसी कई दिल को छू लेने वाली गजलें गाई हैं। उर्दू के अजीम शायर कैफी आजमी की कही ये पंक्ति ही काफी है। गजल के दो मायने होते हैं, पहला गजल और दूसरा बेगम अख्तर। उनकी गायकी जहां एक ओर चंचलता और शोखी भरी थी, वहीं दूसरी ओर उसमें शास्त्रीयता और दिल को छू लेने वाली गहराइयां भी थीं। अदाकारा के रूप में उनकी आखिरी पेशकश थी सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म जलसा घर, जिसमें उन्होंने शास्त्रीय गायिका का किरदार निभाया था। उन्होंने करीब 400 रचनाओं को अपने स्वर दिए। सबसे दिलचस्प बात जो बेगम अख्तर के बारे में है वो ये कि वो जितनी अच्छी गायिका थी उतनी ही अच्छी कंपोजर भी थी। शायद आपको ये जानकर हैरत हो कि बेगम अपने द्वारा गाए गए गाने खुद ही कंपोज भी करती थी। भारत सरकार ने इस सुर साम्राज्ञी को पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। उन्हें मलिकाए गजल का खिताब दिया गया था। 1974 में बेगम अख्तर ने अपने जन्मदिन के मौके पर कैफी आजमी की ये गजल गाई, वो तेग मिल गई जिससे हुआ था कत्ल मेरा, किसी के हाथ का लेकिन वहां निशान नहीं मिलता। किसी को नहीं मालूम था कि इस गजल का ये मिसरा इतनी जल्द सच हो जाएगा। बेगम अख्तर जब अहमदाबाद के मंच पर ये गा रही थी, तब ज्यादा बेहतर की चाह में उन्होंने खुद पर इतना जोर डाला कि उन्हें अस्पताल में ले जाना पड़ा, जहां से वो वापस नहीं लौटी। हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। SBS रेडियो हिंदी के प्रोग्राम तुमको ना भूल पाएंगे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप सबसे ये वादा, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे, ऐसी ही किसी और शख्सियत के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दें इजाजत। बाय बाय।